Enjoy this recording taken from an unscripted live audio conversation on Mensa. That's M-E-N-T-Z-A.
Himanshu ji, adab.
Adab sir. Namaskar, Manoj sir.
Namaskar Himanshu ji, kaise hain aap? Bahut dino ke baad aapki awaaz sunne ko mili.
Badhiya sir, film ki baat wale awaaz nahi sunane dete aajkal.
Bilkul sahi baat. वहाँ तो सुनते हैं कि आज आज आपको पहली बार यहाँ सुनने का मौका मिला
जी.
बिल्कुल. दीपिका जी कहाँ रह गई?
अरे मैं यहीं पर हूँ, देखो.
माशाल्लाह माशाल्लाह.
नमस्कार सबको.
नमस्कार जी. इनका तो
एक और पार्टिसिपेंट की जरूरत है.
आवाज
आवाज गुलाबी है सर. बहरहाल मैं प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं. दोस्तों नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग. हम हाजिर हैं मंजा पर कहानियों का बेहद खास प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है कहानी बुनो. और आज है कहानी बुनो का 17वां एपिसोड. मैं हूं असीम अकरम और मेरे साथ हैं प्रोग्राम क्रिएटर दीपिका जी, मनोज जी और आज के कहानीकार हिमांशु जी और बाकी तमाम हमारे सुनने वाले दोस्त जिनसे हमें लगातार मिल रहा है ढेर सारा प्यार, दुलार, मोहब्बतें वगैरह वगैरह. तो आप सबका स्वागत है आज के प्रोग्राम कहानी बुनो में, जहां हम सुनते हैं सुनाते हैं छोटी छोटी मगर बेहतरीन कहानियां जो हम या आप में से ही किसी की लिखी हुई होती है. और आज की कहानी है हिमांशु जोशी सर की. दोस्तों मेरे दोस्त जमशेद सिद्दीकी हैं, एक बेटे के पिता हैं और उन्होंने फादर्स डे पर सोशल मीडिया के जरिए अपने एक साल के बेटे को खत लिखा है. मैं उसे पढ़ना चाहूंगा. बहुत मार्मिक सा खत है, इसलिए नहीं पढ़ना चाहूंगा कि फादर्स डे पर एक पिता ने अपने बच्चे को खत लिखा है. बहुत सारे पिताओं ने लिखा होगा, बल्कि मैं इसलिए पढ़ना चाहूंगा कि एक शख्स जब पिता बनता है तो वो अपने बच्चे की हिफाजत के लिए किस डर के साथ जमाने के साथ चलता है, किस अजियत के साथ वो जमाने से रूबरू होता है. वह डर वह अजियत मैं हर पिता में देखना चाहता हूं, इसलिए मैं यह खत पढ़ना चाहता हूं. तो पहले पढ़ते हैं मेरे दोस्त जमशेद कमर सिद्दीकी का लिखा खत उनके बेटे के नाम. मेरे बच्चे, मेरी शर्ट के बटन को जब तुम अपने नन्हे हाथों से पकड़कर देर तक हैरानी से खेलते हो, जब तुम अपनी ट्राई साइकिल के पहिए को गोल गोल घूमते हुए देखकर खुश होते हो, जब तुम कमरे की ट्यूबलाइट को हैरानी से ताकते हुए ताली बजाते हो, तो एहसास होता है कि तुम्हारी दुनिया कितनी नई है, कितनी ताजी है, कितनी मासूम है. सब कुछ एक जादू जैसा लगता है, सब कुछ कितना खूबसूरत. जब तुम सोफे के सहारे टेक लेकर खड़े होते हो तो दिल घबराता है मेरा कि कहीं गिर ना जाओ, चोट ना लग जाए तुम्हें, इसलिए मैं तुम्हें थाम लेता हूं. पर ठीक उसी वक्त दुनिया में जो कुछ हो रहा होता है ना मेरे बच्चे, उसका ख्याल आ जाता है मेरे दिमाग में और मैं सहम जाता हूं, क्योंकि तुम्हें थामने वाले ये हाथ हमेशा नहीं रहेंगे और ये दुनिया जिसमें तुम बड़े हो रहे हो दरअसल अब उतनी खूबसूरत नहीं रही जितनी तुम समझते हो मेरे बेटे. ये खत इसलिए लिख रहा हूं ताकि बहुत सालों बाद जब तुम पढ़ो तो समझ पाओ कि मैं और मेरे जैसे अनगिनत लोग जो वक्त के इस हिस्से में सांस ले रहे हैं, वो शर्मिंदा हैं कि हम तुम्हें एक ऐसी दुनिया नहीं दे पाए जिसका ख्वाब हम देखते आए थे. तुम्हारा नाम और तुम्हारी पहचान इस दुनिया के लिए तुम्हारे ख्यालात से ज्यादा मायने रखेगी. तुम उनके लिए उस पहचान से ज्यादा कुछ नहीं होगे. पता है, कुछ साल पहले तक नफरत भरी इन आवाजों पर मुझे हंसी आती थी और कभी कभी तरस भी आता था. मैं तो उन पर जोक्स लिखता था और आगे बढ़ जाता था, लेकिन अब तुम्हारी आमद के बाद से हर नारा हर शोर थोड़ा थोड़ा डराता है मुझे. शायद मेरा डर दुनिया के हर पिता का डर है. दुनिया का हर पिता डरपोक होता है, बिल्कुल मेरी तरह. तो दोस्तों ये था मेरे दोस्त जमशेद सिद्दीकी का लिखा खत उनके बेटे के नाम. दुनिया के कई महान पिताओं ने अपने बच्चों को खत लिखे हैं और क्या ही खूबसूरत बात है कि उनमें से कई के बच्चे भी आगे चलकर महान बने हैं. भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी बेटी इंदिरा को खत लिखा था और वह खत सभ्यता, मजहब और हिंदुस्तानी तहजीब की सबसे खूबसूरत परिभाषा है. जैसा मैंने पढ़ा और समझा महसूस किया। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने भी अपने बेटे के टीचर को खत लिखा था। हालांकि वह खत टीचर को लिखा था, लेकिन था वो उनके बेटे की बेहतर जिंदगी के लिए ही, और उस खत में थोड़ी सी सख्ती भी थी, थोड़ा सा डर भी था। वैसे पिता की सख्ती को हम सबने देखी है और इस कदर देखी है कि गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य को लिखना पड़ा कि बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। लेकिन क्या ऐसा है? शायद नहीं। मुझे लगता है कि शायद नहीं, क्योंकि अब्राहम लिंकन का खत भी ऐसा नहीं था। दोस्तों, बच्चा भले नालायक हो जाए, लेकिन एक पिता कभी भी नालायक नहीं होता, क्योंकि पिता एक ऐसी डोर होता है जो बच्चों के जीवन की पतंग को ऊंचाई पर ले जाता है। मां की तरह पिता कभी भी अपनी आंखों से नहीं रोता, वह तो दिल से रोता है। पिता अपने दुख का इजहार अपने बच्चे के सामने नहीं लाता, क्योंकि वह जानता है कि अगर परिवार का स्तंभ इस तरह कमजोर होगा तो परिवार बिखर भी सकता है। दुनिया के सारे खजाने खाली हो जाएं, लेकिन पिता की जेब अपने बच्चे के लिए हमेशा भरी रहती है। पिता वह बरगद है जिसके साये तले रहकर बच्चे हमेशा राहत पोष फजा में सांस लेते हैं और ये महसूस करते हैं कि माँ के कदमों के तले अगर जन्नत है तो उस जन्नत का दरवाजा पिता है। इसलिए पिता के ना होने का दुख दुनिया का सबसे बड़ा दुख लगता है मुझे। बहरहाल, मैं इमोशनल हो रहा हूं, तो आइए सुनते हैं पिता के ना होने की कहानी, पहले दीपिका जी की आवाज में, जिसे लिखा है हिमांशु जोशी ने। जी दीपिका जी।
जी शुक्रिया वसीम जी। तो जैसा कि वसीम जी ने बताया कि हमारी आज की कहानी हिमांशु जी ने लिखी है और बहुत ही खूबसूरत कहानी है ये। तो मैं शुरू करती हूँ हिमांशु जी की कहानी। दिल्ली के करावल नगर में रहने वाला रवि एक हफ्ते पहले ही मेरठ के सोफीपुर से लौटा था। कोरोना काल के मुश्किल दौर में उसे मनोज को कंधे में बैठा दिल्ली से सोफीपुर पैदल ही जाना पड़ा था। जाता भी कैसे ना, अपने इकलौते बेटे को भूख से तड़पते देख कौन बाप शांत बैठ सकता है। रवि की पत्नी सुनीता मनोज को जनते ही चल बसी थी। अधिक रक्तस्राव होने की वजह से सरकारी अस्पताल ने सुनीता की जान बचाने को लेकर हाथ खड़े कर दिए थे और प्राइवेट अस्पताल के लिए रवि के पास पैसे नहीं थे। कोरोना काल के दौरान झोपड़ पट्टी में ही छूट गई साइकिल को दुरुस्त कर अब रवि धीरे धीरे अपनी जिंदगी के पुराने ढर्रे पर लौट रहा था। मनोज आज अपने पापा रवि के साथ साइकिल में आगे बैठा गाना गाता जा रहा था। उले जैसे हवाएं पवन, उले जैसे पलिंदे, हो, छोटा बच्चा। स्कूल पहुंचने पर रवि ने उसे गोद में उठा लिया और क्लास तक छोड़ाए। धूप चढ़ने लगी थी और रवि खजूरी खास चौक पर कहीं मजूरी मिलने का इंतजार करते थक गया था। हमेशा की तरह जेब में रखे कल रात के भिगाए चने और पास ही हनुमान मंदिर में लगा नलका उसके साथी थे। स्कूल में इंटरवल हो गया था। मनोज क्लास की खिड़की से बाहर एक टक नजरों से खेलते बच्चों को देख रहा था। वो भी कुछ दिन पहले उन बच्चों के साथ खेलता था, पर किसी वायरस की वजह से वो अब ठीक से चल नहीं पा रहा था। गरीबी की वजह से रवि उसका इलाज ठीक से नहीं करा पाया। स्कूल की छुट्टी होते होते रवि स्कूल के बाहर खड़ा था। अले पापा, आज मदन थल ने तबको तेलने का थमान दिया है। घर लौटते साइकिल के आगे डंडी पे बैठूंगा, फिर आपको बताऊंगा। तो घर लौटते समय साइकिल के आगे डंडी पे बैठा मनोज अपने पापा को स्कूल की सारी कहानी सुनाता जा रहा था और मनोज उसकी तोतली भाषा का एक एक शब्द समझता था। मदन जी आज शाम अपनी पत्नी से फिर से झिड़कियां खा रहे थे। क्यों मदन मासा, दुनिया बदलने का ठेका तो आप ही लिए हो। आज अपने पैसों से स्कूल के बच्चों को फुटबॉल, बैडमिंटन रैकेट, क्रिकेट बैट सब बांट आए। अरे अपनी औलाद नहीं हुई तो क्या गैरों पर ही लुटाई जाओगे? मेरे लिए गहने तो बनवाए नहीं जाते तुमसे। अगले दिन स्कूल की व्हीलचेयर में मनोज बैडमिंटन का रैकेट पकड़ अकेले ही खेल रहा था। मदन जी उसके पास आए और उसको खिलाने लगे। मनोज में गजब की फुर्ती थी। वो एक शॉट मार अगले के लिए बिजली की तरह तैयार रहता। शाम रवि करावल नगर में लगे बृहस्पति बाजार से मनोज के लिए जूते, एक पाव बादाम और उसकी मन पसंद सब्जी भिंडी खरीद लाए। रवि के खाना बनाते मनोज उनसे बोला, पापा मैं बड़ा होकर आपके लिए खुद खाना बनाऊंगा। आज मदन कल ने मुझे बैडमिंटन खेलना सिखाया है। रवि मन ही मन अपने बेटे की पर प्यार लुटा रहा था। उसकी तोतली भाषा उसको लुभा रही थी और अपने बेटे के लिए उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मनोज आज मदन जी के सहयोग से जूनियर लेवल पैरा बैडमिंटन खेलने द्वारका जा रहा था। रवि दिल्ली की सड़कों को आज साइकिल से नाप रहा था। साइकिल में पीछे बैठे मनोज में उसे एक उम्मीद नजर आने लगी थी। यही तो उसकी दुनिया थी। करावल नगर से द्वारका की लंबी दूरी भी आज रवि के लिए कुछ नहीं थी। वो बिना थके द्वारका पहुंच गया। एक के बाद एक ताकतवर शॉट। मनोज आज पैरा बैडमिंटन का नेशनल चैंपियन था। जीत कर मिले पैसों को वो अपने पापा को सीधे ले जाकर देता था। रवि भी खुश था। कुछ ही सालों में मनोज ने खेल के पैसों से एक ऑटोमेटिक कार ले ली और अपने पिता के लिए करावल नगर में ही एक पक्का मकान बनवा दिया। मनोज अपने खेल में कोई भी खामी आने पर सीधे मदन जी के घर का रुख करता था। कुछ दिनों बाद मनोज का पैरालंपिक में जाने वाली भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के लिए ट्रायल होना था। रवि के कदमों में बैठा मनोज कहता, पापा देखना अब आपको पूरा देश जानेगा। आप मेरे साथ विदेशों में भी साथ रहोगे। हम मिलकर पूरी दुनिया घूमेंगे। रवि कहता है, वो सब तो ठीक है, तो ये बता बहू लाकर मुझे कब अपनी चिंता से मुक्त करेगा। अरे पापा पहले खेल पर तो ध्यान देने दो, ऐसा कहते रवि ने बात घुमा दी। मदन जी मनोज को लेने उसके घर ही आए थे। कोर्ट में मनोज के शॉट्स का कोई जवाब नहीं था। वहां बैठी भारतीय बैडमिंटन कोच साइना अग्रवाल भी मनोज से बहुत प्रभावित थी। मनोज को भारतीय बैडमिंटन पैरालंपिक टीम में शामिल होने के साथ उसके अगले विदेशी दौरे के लिए भी तैयार रहने के लिए कह दिया गया। मनोज बहुत खुश था। घर जाते ही पापा को गले लगा लेना चाहता था। 2 महीने बाद नीली जर्सी में मनोज एक के बाद एक शॉट से चीन में ही हो रहे मैच में चीनी खिलाड़ी को परस्त कर रहा था। मदन जी की आंखों में आंसू थे। मनोज भारत का पहला पैरालंपिक बैडमिंटन चैंपियन था। भारत पहुंचकर वो और मदन जी सीधे हरिद्वार पहुंचे। रवि आज एक छोटे से अस्थि कलश में बंद था और उसे एक अनंत यात्रा में निकलना था। जिस दिन मनोज का चयन इस पैरालंपिक टीम के लिए हुआ था, उसी दिन मनोज के घर लौटने से पहले रवि का दिल उसका साथ छोड़ चुका था। आज भले ही रवि इस दुनिया से दूर चले गए हों, पर मनोज के लिए तो उसके पापा हमेशा उसके साथ हैं। मनोज ने मदन जी से कहा कि अब तो पापा हमेशा मेरे साथ चलेंगे, हमेशा मेरे साथ रहेंगे मेरे रवि पा। शुक्रिया।
बहुत खूबसूरत दीपिका जी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने। यही इस प्रोग्राम की खासियत है कि हम छोटी मगर बेहतरीन कहानियां आप सबके लिए चुनते हैं और दीपिका जी अपनी आवाज से उसे और भी बेहतर बना देती हैं। लफ्जों की रुमानियत हो या फिर उसका अल्हड़पन, दीपिका जी की आवाज में सब अपना मुकम्मल वजूद पा जाते हैं। बहुत शुक्रिया दीपिका जी।
थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत कहानी भी थी हिमांशु जी की, पढ़ने में बहुत।
जी बिल्कुल बिल्कुल। और हिमांशु जी से हम जानना चाहेंगे इस कहानी की बुनावट के बारे में, क्या है इसका लेखन सीक्रेट।
धन्यवाद सर। और मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ तो मैं बहुत ही भावुक हो गया हूँ अभी। और जी। सजीव सर भी कह रहे हैं कि एक साल के अंदर में बहुत चेंजेस आए, तो हाँ आरपीआई को मैं इसका श्रेय देता हूँ। और जब मुझे ये कहानी बुनो के बारे में पता चला था तो उसी दिन मैंने सोचा था कहानी लिखूंगा, क्योंकि कमेंट में तो मैं दो दो लाइन की बहुत सी कहानियां बना लेता था, लेकिन बड़ी कहानी लिखना बहुत मुश्किल काम था। विश्व दीपक सर जब इसमें विजेता बने थे तो मैंने उनसे एक प्रेरणा ली कि सर की तरह एक मैं भी कहानी लिखूंगा, और सर से मेरी बात भी हुई थी एक बार। तो एक सुबह को एक पिताजी अपने बच्चे को ले जा रहे थे, मेरे सामने की बात है, उसको बैडमिंटन उन्होंने रैकेट उसने हाथ में पकड़ा था, तो मैंने देखा और मुझे याद आया वो संघर्ष जो एक पिता बचपन से अपने बच्चे को मतलब बढ़ाता है, उसके लिए अपना समय निकालता है, उसके हाथ पकड़ उसे चलना सिखाता है। तो वहां से मुझे आइडिया आया था कि मैं कहानी ऐसी लिखूं जिसमें बैडमिंटन के बारे, और अभी उत्तराखंड से लक्ष्य सेन का उदाहरण हमारे सामने है जो पूरे विश्व में जो अपना नाम रोशन कर रहे हैं, पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और इसमें एक हर पिता का संघर्ष मुझे दिखता है इस कहानी में। और कोरोना मैं शुरू में जो कहानी शुरू में जब शुरू होती है तो इसमें कोरोना काल की बात है जिसमें हम कंधे में कई पिताओं को देखते थे कि वो कंधे में बैठा के अपने बेटे को वापस अपने गांव ले जा रहे हैं।
वो तो बहुत मार्मिक दृश्य था
जी। तो वही मैंने इसमें शुरुआत तभी, दरअसल इस कहानी में शुरू में मैंने शायद ज्यादा पिता का रोल बुना नहीं था, तो फिर उसके बाद आपके कहे अनुसार मैंने वो करा, और उसमें फिर पिता का मैंने जो एक पूरा एक अपने बच्चे को बढ़ाने में जो योगदान था इसमें रवि के पापा का, तो रवि का मनोज के लिए, तो मैंने वो सब उसमें उतारा। और हम एक उदाहरण थोड़ा सा एक देखते हैं विराट कोहली का। विराट कोहली हमेशा कहते हैं कि उनको जो आज वो हैं तो वो अपने पापा की वजह से हैं, और जब वो एक जगह कहीं शतक बना लेते तो घर में उनके पापा गुजर गए थे। तो बस यही जो हमारे सामने है, जो चीजें चल रही है, बस इसी से मुझे प्रेरणा मिली और मैं ये कहानी लिख पाया।
बहुत शुक्रिया हिमांशु जी। हमारे साथ हैं मनोज सर। हम जानना चाहेंगे मनोज सर से कुछ इस कहानी के बारे में और इस प्रोग्राम के बारे में। काफी दिनों के बाद वो आए आज हमारे शो पर
जी। और वसीम साहब, बाकी दीपिका जी और आपका, आपको तो जितना श्रेय दिया जाए उतना ही कम है कि क्या ही खूबसूरत महफिल आप सजाते हैं, और दीपिका जी की आवाज तो वाकई जो माशाल्लाह है,
आपकी नवाजिश है सर।
और आपने जो आज जो है वो प्रीफेस दिया और जो आपने खत पढ़ा आपके दोस्त का अपने बेटे के नाम पे, वो तो माशाल्लाह मेरे ख्याल से मेरे जहन से कभी बाहर ही नहीं निकलेगा, क्योंकि इतना खूबसूरत उन्होंने लिखा और उतनी खूबसूरती के साथ आपने पढ़ा भी। बहुत खूबसूरत खत था वो
जी। शुक्रिया।
तो आप हमेशा ये जो है जान डालते हैं किसी भी प्रोग्राम में आप हो तो
आपकी नवाजिश है सर, दुआएं मिलती रहती है इसलिए जान डालना पड़ता है।
बहुत मोहब्बत आपसे, बहुत मोहब्बत
जी।
मैं हिमांशु जी की स्टोरी पे आऊं तो हिमांशु, वाकई अगर आपने कहा कि आपने इस तरीके से सोचा इस कहानी को और लिखा, जब आपने लास्ट में एक जगह बोला जहां पे दीपिका जी ने कहा पैरा ओलंपिक, तो पूरी की पूरी कहानी चेंज हो गई। पैरा ओलंपिक क्योंकि वो सिर्फ डिफरेंटली एबल्ड लोग ही खेलते हैं, तो पैरा ओलंपिक वो गेम्स है जहां पर अपाहिज मतलब जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल कैन ओनली पार्टिसिपेट। तो आपने वो शब्द को वहां जोड़ करके एक और मायने दे दिए अपनी कहानी को। मैंने एकदम से जैसे मैंने सुना कि पैरा ओलंपिक और मुझे लगा अरे यानी कि
हाँ वो विकलांगों के लिए होता है।
हाँ, डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड था मनोज, और उसके बाद जो उसके फादर ने उनके लिए किया वो वाकई कहानी बहुत ही मार्मिक बनी। हिमांशु जी आपको बहुत बहुत बधाई क्योंकि बहुत ही खूबसूरत कहानी आपने गढ़ी, और वाकई दीपिका जी की आवाज तक वो पहुंची हम तक, और बहुत ही मार्मिक, और आपको बहुत बहुत बधाई हिमांशु जी। शब्दों को एक शब्द को ऐड करके आपने मायने बदल दिए उस कहानी, बहुत खूबसूरत।
बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा दीपिका जी,
मैं भी हिमांशु जी के लिए कुछ शब्द कहना चाहूंगी कि वाकई बहुत खूबसूरत कहानी थी। और हिमांशु जी आपके जो चेंजेस के बाद मैंने कुछ लाइनें जोड़ दी हैं, तो माफी चाहूंगी कि आपको मैंने पहले बताया नहीं वो एंड मोमेंट पे अभी अभी किया मैंने।
अरे दीपिका जी वो आपका संपादकीय अधिकार है, वो कोई बात नहीं।
तो बहुत खूबसूरत कहानी थी इन सच में हिमांशु जी, बहुत दिल को छू लेने वाली कहानी थी। और जैसा होता है ना कि कहानी पढ़ने में भी आपको बहुत मतलब जिसे कहते हैं कि दिल से पढ़ी जाए वैसी कहानी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खूबसूरत कहानी लिखी थी आपने।
और हिमांशु जी ने एक जिक्र किया, मेरे दिमाग से निकल गया था बीच में, जिक्र किया कि विश्व दीपक जी पिछले सप्ताह उनको बेस्ट स्टोरी राइटर का अवार्ड अनाउंसमेंट हुआ था, सजीव सर ने किया था, तो मैं चाहूंगा कि विश्व दीपक सर अपना एड्रेस मुझे भेजे, मैं उनको गिफ्ट भेजूंगा। और दूसरी बात कि हम हिमांशु जी ने दो कहानियां लिखी थी और वो दोनों ही खूबसूरत थी, हमारे पास वक्त होता तो हम दूसरी भी कहानी पढ़ते। ये कितनी अच्छी बात है कि एक हिमांशु जी ने पहले ही प्रयास किया, कोशिश की कहानी लिखने की और दो कहानियां एक ही टॉपिक पर लिखी और दोनों ही खूबसूरत। हमें चुनने में मुश्किल आ रही थी कि हम किसको चुने, तो हमने दीपिका जी और को थोड़ा सा हैंड ओवर किया कि आप सेलेक्ट। तो थैंक यू दीपिका जी। बहरहाल अब मैं चाहूंगा कि दीपिका जी अगले सप्ताह का टॉपिक बता दें।
जी थैंक यू वसीम जी। अगले सप्ताह के लिए मैं कुछ अलग सा कुछ टॉपिक देना चाहती हूँ इस बार। अक्सर आपने कहते सुना होगा लोगों को कि मन चंचल होता है, भागता है इधर से उधर, है ना? तो मन हवा से भी तेज भागता है, बावरा होता है, शायद पंछी के जैसे एक जगह टिकता ही नहीं, पल में यहाँ तो अगले पल जाने कहाँ, कभी अतीत में जाकर उदास होता है, कभी भविष्य में जाकर खुश हो जाता है। तो इसी तरह हम अपने मन को परिंदा समझते हैं, तो हमारा इस बार का टॉपिक है मन परिंदा, क्योंकि मन परिंदे के समान होता है, कहीं टिकता ही नहीं। तो इस बार का हमारा टॉपिक रहेगा मन परिंदा।
बेहतरीन टॉपिक है, और मैं चाहूंगा मनोज सर से कि इस टॉपिक को थोड़ा सा ब्रीफ करें कि हमारे कहानीकार जो सुन रहे हैं, जो लिखना चाह रहे हैं, वो क्या लिखे, मतलब के क्या किस तरह कहानी बुने, वो सीक्रेट जो हम सारे लेखकों के पास है। मनोज सर हमारे अग्रज हैं और बड़े जहीन हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वो इस सीक्रेट को बताएं कि किस तरह से कहानी बुनी जाए।
देखिए मैं आपसे ये कहूंगा कि मुझे तो शायद इतना ज्यादा इल्म नहीं है इस बारे में, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए मन परिंदा, अगर मैं अपने आप को देखूं, अगर मैं अपने आप को ढालूं इस शब्द के अंदर, तो मैं तो आई एम अ ट्रैवलर, तो मुझे तो ऐसा लगे कि मैं शायद मेरा मन जो है परिंदा होता है। जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूं, मेरे हाथ में कैमरा होता है, मैं कुछ फोटोग्राफ्स कर रहा होता हूं या फिल्म्स बना रहा होता हूं, या सिर्फ एकांत में डल झील के पास बैठ करके सिर्फ उन चीजों को देख रहा हूं कि शिकारे आ रहे हैं, शिकारे जा रहे हैं, लोग उतर रहे हैं, हंसी ठहाके कह कहे कितने कितने बिंब इस एक मतलब एक उसमें मन परिंदे में कितनी सारी चीजें आ सकती हैं कि मैं सिर्फ जा रहा हूं कार में और शीशा खोल करके बाहर देख रहा हूं, पहाड़ों को देख रहा हूं, और कहां मेरे ख्याल जो है लेकर के मुझे कहीं चले जाएं, तो मेरा तो मन परिंदा हो गया ना। तो कितनी कहानियां बुनी जा सकती हैं। मैं चाहूंगा कि जितने लोग सुन रहे हैं हमें, आप जरूर देखिए मन परिंदा है हमारा, तो कहां लेकर के आपको जाए, बस जहां पहुंचे वहीं से गढ़ दें कहानी, वहीं से बुन लें।
बिल्कुल बिल्कुल। और तो दोस्तों आपने सुना मनोज सर का जो टिप्स है कहानी बुनने को लेकर, तो मंडे तक हमें भेज दें कहानी 500 से लेकर 700 शब्दों के बीच हो कहानी आपकी, और टॉपिक आप लोगों ने समझ ही ली है। तो और मेल आईडी हमारी कहानी बुनो @gmail.com KAHANIBUNO@gmail.com। तो कहानियां लिखते रहें और भेजते रहें और सुनते रहें हमारा खास प्रोग्राम कहानी बुनो मेंजा पर, और साथ में अपने मशवरे, कुछ सुझाव, कुछ राय, ऐसे मशवरे जो आप दे सकें कि हम इस प्रोग्राम को और भी बेहतर बना सकें, तो आप देते रहें। मेल के जरिए भी दे सकते हैं, हमारे इस कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं, प्रोग्राम के दौरान दे सकते हैं। ठीक है, बहरहाल दीपिका जी आप समापन की तरफ।
वसीम साहब एक क्वेश्चन मैं हिमांशु जी से पूछना चाहूंगा।
बिल्कुल बिल्कुल।
हिमांशु जी जो हैं वो पुलिस की नौकरी में है, बहुत ही कड़क नौकरी होती है ये, तो ये कहाँ से इतने संजीदा ख्याल इनके पास आए और किस तरीके से बुने, क्योंकि जो इनका समय होता होगा वो तो बहुत ही बड़े डिसिप्लिन उसमें जाता है, तो ये मतलब बहुत ही सॉफ्ट हृदय जो है वो कैसे आता है और किस तरीके
जी,
से
जी जी जी। दो मिनट है हिमांशु जी, ब्रीफ में बताएं।
हिमांशु जी एक, हाँ जी,
जब मैं कोई भी आर्टिकल लिखता हूँ, चाहे वो पर्यावरण के बारे में हो, खेल के बारे में हो, राजनीति के बारे में हो, जब मैं कोई कविता लिखता हूँ, चाहे वो भी इन्हीं जो विषय मैंने पहले बताया उनके बारे में हो, या कोई ऐसी कहानी, तो मैं दिन भर दिमाग में, चाहे शरीर में वृद्धि है लेकिन दिमाग में ये चलते रहता है, एक दिमाग में बस वही सब जो चलता है, और क्योंकि पुलिस का काम ऐसा होता है कि उसमें हम फिजिकली तो मौजूद रहते हैं, दिमाग का ज्यादा काम नहीं होता, तो मैं उसी का फायदा उठाता हूँ, और कभी कोई इम्पोर्टेंट नोट्स अगर मन में आ जाते हैं तो उसे फोन में लिख लेता हूँ, तो यही है सर बस।
बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी।
तो और दीपिका जी, मैं हिमांशु जी से एक और बात पूछना चाहूंगी, उन्होंने दो कहानियां भेजी थी हमें और वाकई दोनों ही बहुत खूबसूरत थी जैसा कि आपने कहा, तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि दूसरी कहानी भले हमने नहीं पढ़ी है समय के वजह से, लेकिन हिमांशु जी उसके बारे में भी आप बताइए, उसकी प्रेरणा या उसको लिखने का, क्योंकि एक मिनट है हमारे पास, शॉर्ट में फटाफट से बता दीजिए।
जी जी बिल्कुल,
उसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो उसमें कॉलेज वाला लड़का है तो उसकी जगह आप मुझे ले सकते हैं, बस वही।
तो बस ये सीक्रेट बना रहने देते हैं और अभी हम ये कहानी जरूर पढ़ेंगे हिमांशु जी की, और सबको फिर सीक्रेट का खुलासा होगा जो हिमांशु जी ने हमें लिखा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्पीकर्स का, हिमांशु जी, मनोज जी, वसीम जी, आप तो हम कमाल ही हैं, और बाकी सारे लिसनर्स का
आपका भी शुक्रिया
जी, और मनोज जी के जो बीच बीच में कोट्स और तारीफें होती हैं, क्या कहने, थैंक यू सो मच। और हिमांशु जी हमेशा आप
हमें तो लगता है कि मनोज सर के बगैर हम प्रोग्राम शायद ना कर पाए, अच्छा लगता है मनोज सर का आना प्रोग्राम पे, हमें कुछ गाइड करना।
मैं तो चाहती हूँ सभी जुड़े हमारे साथ हर बार, और अगले बुधवार मिलते हैं 9 बजे नई कहानी के साथ।
मन परिंदा।
इफ यू एंजॉय दिस, download the Mensa app and start your own live audio conversation.